जो राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
व्रज जनरंजन
यशोदानंदन, व्रज जनरंजन
यशोदानंदन, व्रज जनरंजन
यशोदानंदन, व्रज जनरंजन यशोदानंदन, व्रज जनरंजन
यशोदानंदन,
व्रज जनरंजन
यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग,
नित्याय गौरंग
जय नित्याय गौरंग,
नित्याय गौरंग jaya nittai goranga nittai goranga jaya nittai goranga
hari bo hari bo nittai gora hari bo
nittai gor hari bo hari bo hari bo nittai gor hari bo
సంకీర్తనకి
జయ
అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి
జయ
శ్రీల ప్రభుపాదికి
జయ
ఓం అజ్ఞాన నిమిరందస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షువన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేష్ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః హరే కృష్ణ ఆప్ సబ్కో స్వాగత్ హై భాగవత రసామాయణ కే కార్యక్రమ మే హమ్ ఆజ్ తీసరే అధ్యాయ మే ప్రవేశ్ కర్ రహే హై పిచ్లే దూసరే అధ్యాయ మే కుచ్ భక్తోం కీ సుజావ్ తీ కి హమ్ और समय थोड़ा बढ़ाए और अच्छी तरीके से गहराई से हम विषय को समझाए तो मैंने बताया था कि पहला तीन अध्याय जो है 1, 2 और 3 उसमें थोड़ा तत्व ज्यादा है अगर हम विस्तृत रूप से बताना हो तो और समय की जरूरत पड़ेगी लेकिन उसके बाद चौथा अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक बहुत विविध तरह की लीलाएं हैं बहुत मधुर लीलाएं हैं लेकिन उन लीलाओं के लिए बुनियाद है पहले तीन अध्याय इसलिए थोड़ा बहुत इसमें तत्व ज्यादा है आप डर मत जाना कि भागवत पहला स्कंद बहुत जटिल दिख रहा है ऐसे मत सोचना आप ये तीसरा अध्याय होने के बाद चौथा अध्याय से कथा सा चालू होगा नारद मुनि की उसके बाद पांडवों की और भगवान कृष्ण आएंगे सातवें अध्याय में अब हस्तिनापुर जुड़कर भगवान द्वारका जाएंगे द्वारकावासी उनको स्वागत करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर मधुर लीलाएं हैं तो ये अध्याय को हम संक्षिप्त रूप में 1.5 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको तो पीपीटी मिल जाएगा पावर पॉइंट तो भागवत भी है आपके पास आप क्लास होने के बाद धीरे से बैठकर आप शांति से पूरा देख सकते हैं थोड़ा मैं तेजी से चलाना पड़ता है कम समय में क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम भी है तो अब हम पिछले अध्याय में लास्ट पार्ट जो छोड़ा था हमने पिछले बार उसको अभी जोड़कर इधर बताएंगे इसके आगे बढ़ाएंगे उसके बाद ठीक है तो 23वां श्लोक से लेकर 29वां श्लोक में बताया जा रहा है महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट देव हैं, पूजने के लिए योग्य व्यक्ति हैं, और बाकी सब देवताओं को हम कभी कभी निंदा नहीं करते हैं, उनको भी आदर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो सब भगवान कृष्ण के ही पार्षद हैं, कृष्ण के ही सहायक हैं, कृष्ण के ही दास हैं। जैसे हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री हैं, ये एक मुख्यमंत्री हैं, अनेक 29-30 मुख्यमंत्रियां हैं, इसी तरह देवता भी अनेक हैं, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन परम सत्य परम भगवान एक ही है। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरं, तम दैवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमेद्यं, यस्मात् परं नावरमस्ति किंचित्। उनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है, ऐसे बताया गया। यस्मान् नाणियो जो योस्ति किंचित् वृक्षैव स्तब्धो द्विविदिष्टत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। ये श्रुति मंत्रों में बताया गया है, इस तरह बताया है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो अणियो रणियान महतो महियान, बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, उनके बराबर कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। पतिम पतीना, नेताओं के नेता है वो, पिताओं के पिता है, सब देवताओं के भी स्वामी है, ये सर बताते हैं। जैसे वेंकटेश सुप्रभातम में भी ऐसे गुणगान होता है, कमला चुकचूच ककुंकुमतो निजकारुणितातुलनीलतनो कमलाय चलोचनलोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय मां वृषशैलपते। ये बता गया सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख, षण्मुख मतलब कार्तिकेय, पंचमुख का मतलब शिव जी, चतुर्मुख का मतलब ब्रह्मा जी, वो सब आकर झुकते हैं भगवान कृष्ण को बालाजी के रूप में। तो इस तरह सब देवता भगवान के ही दास हैं, उनकी इच्छा अनुसार वो सेवा देते हैं उनको, ये बात जानना आवश्यक है। तो उस अध्याय में, पूर्व अध्याय में एक विषय महत्वपूर्ण चीज बताया गया कि इस दुनिया में घोर रूप के कुछ देवताएं हैं, जैसे भद्रकाली, काल भैरवा, ऐसे लोग, और बहुत शुभ दिखने वाले जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी इत्यादि, ये भी हैं। दोनों तरह के देवता हैं, देव देवता हैं, इसलिए बताया गया है मुमुक्षवो घोर रूपान हितवान भूतपति नथा नारायण कला शांतान भजंती ही अनसूयव। सुंदर श्लोक है, पिछले अध्याय के हैं। उधर बताया गया कि जो लोग मुमुक्ष होते हैं, इस भौतिक दुनिया को छोड़कर भगवत धाम लौटना चाहते हैं, मुमुक्ष वो घोर रूपान, जो घोर रूप वाले देवताओं की पूजा उपासना नहीं करते हैं, जैसे काली, भद्रकाली, चंडी, चामुंडी इत्यादि की, क्यों, काल भैरवा ऐसे, तो इसका कारण क्या है, उनकी पूजा में अनेक बार चिकन मटन इत्यादि काटा जाता है, वो लोग शराब भी पीते हैं, मांस खाते हैं, इस तरह का पूजा इत्यादि होता है, वो तमोगुणी पूजा होता है उसमें है। इसमें भगवान के भक्त लोग जो भागवत पढ़ने वाले, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इनकी उपासना करने वाले सत्वगुणी प्रदान होते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हैं भागवत कथा, अगर आप मांस खाते हो तो आपको मांस खाने में कुछ मजा नहीं रहेगा, आप छोड़ देंगे उसको, जब आप नाम जप चालू कर देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा लेना, अवैध संग सब छोड़ देंगे हम, ये बुरे कर्मों को छोड़कर, कुकर्मों को छोड़कर भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम को भोजन में, शाकाहारी भोजन में तुलसी डालकर अर्पण करके उसको ही हम पाएंगे हम। इसलिए उधर बताया गया कि इन देवताओं को हम निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के ही कुछ शक्तियां हैं, देवता हैं, लेकिन हम उनको आदर देना चाहिए, लेकिन हम उनकी पूजा आराधना नहीं करते हैं उनकी, ये बात बताया गया पूर्व अध्याय में। क्योंकि उन देवताओं की पूजा से भी भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ है, उसके लिए दिखाया गया है इधर। एक सुंदर श्लोक है उधर, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वो आठ चीज को मैंने पिक्चर में दिखाया आपको इधर, वासुदेव परा वेदा। सब वेदों को पढ़ने के बाद अंत तो गत्वा एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वेदश्च सर्वेद अहमेव वेद्यो। कृष्ण बोलते हैं कि वेदों को पढ़कर मुझे प्राप्त करना ही उच्च कोटि लक्ष्य है वेदों का। हाँ, अगर कोई चार वेदों का चतुर्वेदी बन गया लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं किया तो कुछ काम का नहीं है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। वासुदेव परा मखा, मखा का मतलब है जो यज्ञ करते हैं वो भगवान कृष्ण यज्ञ पुरुष है। एक बार यज्ञ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उस समय कृष्ण बलराम और अनेक गोप बाल उनके घर के पीछे ही आए थे बगीचे में। तो उन्होंने अपने गोप बालकों को भेजा था कि जाकर थोड़ा भोजन प्रसाद लेके आओ। आए थे लेकिन ब्राह्मणों ने उनका परवाही नहीं की क्योंकि यज्ञ क्रिया में लग गए थे। उसके बाद कृष्ण ने बोला ठीक है उनकी धर्मपत्नियों को मांग कर लेके आओ। तो उनकी धर्मपत्नियों को मांगा तो ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी उन्होंने जो लोग फल फूल या तरकारी इत्यादि बेचने के लिए जो आते हैं तो उन लोगों से वृंदावन की लीलाओं को सुनते थे ये ब्राह्मणों की पत्नियां। सुनकर उनको कृष्ण की ओर पहले से भक्ति जग गया था उनके हृदय में। जब उन्होंने सुना गोप बालकों ने बुलाया क्या क्या कृष्ण आए हैं क्या कृष्ण बलराम आए इधर हमारे बगीचे में, तुरंत तो बड़े 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 डब्बाओं में ये विविध तरह के व्यंजन बनाकर गर्मा गर्म उसको लेके आकर भगवान कृष्ण बलराम गोपाल सबको परोसा उन्होंने प्रेम से। पहली बार उन्होंने कृष्ण की साक्षात दर्शन की। श्यामम हिरण्य परिदम वनमाल्य वर्ग धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रताम से विन्यस्त हस्त इतरेण धुनान नाब्जम कर्णोत्पल अलग कपोल मुकाब्जहासम। सुंदर श्लोक है, कृष्ण की सुंदर स्वरूप का वर्णन है। भगवान कृष्ण के घुंघराले बाल थे, मोर पंख था, नीले रंग वाले कृष्ण थे, उनके हाथ में मुरली था, दूसरे हाथ में उन्होंने अपने गोप बालकों के कंधे के ऊपर हाथ डाला था और हाथ में एक कमल को लेकर ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसे सुंदर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो उनको और उनके जो पीतांबर था चमक रहा था ये सुनहरा रंग का। तो वो लोग भगवान को दंडवत प्रणाम करके भगवान के दर्शन पाकर सबको प्रसाद परोस कर भगवान की भगवान को ही प्राप्त कर लिया अपने जीवन में। उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त किया उन स्त्रियों ने। लेकिन यज्ञ ब्राह्मण स्त्रियां वापिस आने के बाद अपने आप को बोल रहे थे दिखा रहे हमारा दिक् जन्मना त्रिवृत यत दिक्कुलम यत क्रिया दाक्ष्यम। वो बोले कि विमुख ये तो अलोक्षजे, अरे हम लोग विमुख हो गए कृष्ण की, विमुख होकर यज्ञ में फंसे हैं लेकिन जो यज्ञ पुरुष हैं वो कड़े हैं उधर हमारे बगीचे में उनको भूल गए हैं। इस तरह अपने आप को कोसा उन्होंने। वही बताया गया कि सब वेदों का मूल उद्देश्य मूलभूत उद्देश्य है भगवान कृष्ण की खुशी के लिए वेद करना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना। वासुदेव परा योगा, योगी लोग ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। आजकल तो योगासन के लिए अनेक लोग जाकर जुड़ते हैं लेकिन योगासन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं कि हम कुछ संदुरुस्त बनकर और इंद्रिय भोग करें, वो योग का उद्देश्य नहीं है। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगियों का उद्देश्य है उनके हृदय में भगवान कृष्ण को देखना। हृदय के योगी बैठा है हृदय में कृष्ण को देख रहा है। वो धारणा ध्यान समाधि सर पर जो योगी आता है तब कृष्ण को देखता है अपने हृदय में। और क्रिया सब तरह के हम कार्य करते हैं, ये वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र सबका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। और ज्ञान अर्जित करते हैं हम शास्त्र पढ़कर, उसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है जैसे बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है ये समझकर एक ज्ञानवान व्यक्ति शरण लेता है भगवान की, वही ज्ञान का उद्देश्य है। और तप किसके लिए करना चाहिए? ध्रुव महाराज किया तप विष्णु के लिए, विष्णु की प्राप्ति हुई उनको। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्पम शुद्धि अस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो तप करेंगे विष्णु के लिए तो हमारे चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो गया तो हम परमानंद को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम अनंत सुख को प्राप्त करेंगे भगवान के श्री चरणों में सेवा में। और धर्म जो करता है इंसान उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। अनेक धर्म है, स्त्री धर्म है, परिवार धर्म है, देश धर्म है, समाज धर्म है, ऐसे अनेक धर्म है इस दुनिया में। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन जो सब धर्मों से परे होकर मेरा शरण लेता है वही उच्च कोटि का भक्त है, भगवान बताते हैं। और गति गंतव्य स्थान क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंतिम काल में भगवान की नाम का स्मरण करके उनके वैकुंठ धाम में पहुंचकर उनकी नित्य निरंतर सेवा देना, यही गति है। इस तरह ये वासुदेव का श्लोक जो है, आठ चीज जो बताया मैंने आपको, ये सब के सब हमें समझाते हैं कि भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण ही शाश्वत पुरुष हैं, शाश्वत मालिक हैं, शाश्वत स्वामी हैं, वो आदि हैं। देवताओं के लिए भी वही आदि पुरुष हैं, देवताओं को सृष्टि करने वाले भी वही होते हैं वासुदेव। और वासुदेव के बराबर कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, वो अनादि काल से थे, अनंत काल तक रहेंगे वो, उनका कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत पुरुष हैं, हम सब उनके ही अंश हैं। वसुदेव सब जीव के हृदय में वसन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा वसुदेव, वासुदेव ऐसे। और वो वसुदेव के पुत्र भी हैं, इसलिए वासुदेव है। तो ये बात समझना आवश्यक है, हम लोग समझ लेना चाहिए कि भगवान वासुदेव के तीन लक्षण बताए गए हैं वेदों में, परम तत्व, सर्वशक्तिमान, अखिल रसामृत मूर्ति, तीन चीज है। परम तत्व का मतलब उनसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, यही वास्तव वस्तु है जो हमने पढ़ा था दूसरे श्लोक में पहले अध्याय के हैं, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम, वास्तव वस्तु है वो भगवान। इसका मतलब इस दुनिया में सब मिट जाएगा लेकिन वासुदेव कभी नहीं मिटेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे वो, इसलिए उनसे संबंध जोड़ना ही बुद्धिमता है। इस तरह बताते हैं कि परम तत्व है वो भगवान, दूसरा है सर्वशक्तिमान, सब शक्तियां उनके आधीनता में रहकर काम करते हैं, जैसे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, सब तरह की शक्तियां उनके आधीनता में रहते हैं, उनको सलाम मारकर सेवा देते हैं उनको। तीसरा है अखिल रसामृत मूर्ति, ये अखिल रस मूर्ति भगवान कैसे हैं, अखिल रस अमृत मूर्ति का मतलब सब जीवों के साथ पांच रसों में आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का, शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में। इसके बारे में आगे आने वाले अध्याय में पढ़ने वाले हैं, भगवान कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। तो इस तरह हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रश्न पूछा गया इनके द्वारा, शौनकादि ऋषियों के द्वारा, कृष्ण इस दुनिया में अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए, उनके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य भगवान अवतरित हुए, वो एक प्रश्न था। तीसरा, चौथा प्रश्न था, क्या क्या भगवान ने इस दुनिया में क्रिया सृष्टि की तौर पर, भगवान ने भौतिक जगत के सृजन के संबंध में क्या कार्य किए, ये था चौथा प्रश्न। ये दो प्रश्नों का जवाब इस अध्याय में आपको मिलने वाला है, कृष्ण इस दुनिया में क्यों अवतरित होते हैं, किस तरह क्या क्या अवतारों में आते हैं, तो अनेक अवतार हैं, जैसे लीला अवतार है, गुणावतार है, मनवंतर अवतार है, युग अवतार है, ऐसे अनेक अवतार हैं। तो आज अवतारों के बारे में हम बताएंगे आपको। और चौथा प्रश्न जो है, सृष्टि कैसे किया भगवान ने, तो सृष्टि के बारे में भी वर्णन है इधर। भगवान अगर कृष्ण को सृष्टि करके सब जीवों को इस दुनिया में जब लाया उन्होंने, तब उनको एक स्थान में स्थित करना हो तो सृष्टि कैसे करते हैं, दोनों का वर्णन है इस अध्याय में। तो अभी पहले चौथा प्रश्न का जवाब है इधर। तो भगवान कृष्ण को जब सृष्टि करना होता है, खुद नहीं करते हैं सृष्टि, वो नियुक्त कर देते हैं तीन विष्णुओं को, अपने आप से विस्तारित कर लेते हैं तीन विष्णुओं के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बहुत बड़े करोड़पति हो आप, अगर आपको कुछ कंपनी चलाना हो, कारखाना चलाना हो, आपके पास 50,000 करोड़ है, मान लीजिए ऐसे, तो अगर किसी पास 50,000 करोड़ है, व्यक्ति क्या खुद कारखाना चलाएगा क्या, वो क्या करेगा, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर देगा कंपनी, वो कंपनी बनाएगा, पैसा ऐसे फेंकने से सब काम करवा लेगा। अगर उसको कुछ बिल्डिंग को निर्माण करना हो तो पैसा फेंकने का निर्माण हो जाएगा। जैसे पुणे में एक पारसी है व्यक्ति, उसका 10 प्रॉपर्टी है पुणे में उसका, है खुद भागता नहीं, भाग दौड़ नहीं करता, घर में बैठे बैठे क्या करता, पैसा फेंकता है, सब निर्माण हो जाता है, सब बिल्डिंग कर देते हैं उसको, उसके लिए। इसी तरह अगर कोई लाखपति करोड़पति अरबपति खरबपति लोग बैठे बैठे काम करवा लेते हैं, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, क्या उनको भागना पड़ेगा क्या उनको? अगर सृष्टि करना हो तो खुद भागना नहीं है उनको, बैठे बैठे काम हो जाता है। कैसे करते हैं? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते तरास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्रुति मंत्र है, पता है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको किसी भी कार्य करना नहीं पड़ता उनको, वो तो क्या आलसी पड़े हैं क्या, कुछ काम करते ही नहीं, नहीं लीला में मग्न है, अपने ही धाम में भगवान अपने भक्तों शुद्ध भक्तों के साथ लीला करने में पूरा समय बिताते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में। लेकिन इस तरह की सृष्टि की काम करना हो भौतिक दुनिया की, ये तो अगर देश भारत देश में अगर कुछ कुछ चोरों को डालने के लिए एक कारागर बनना होता है, तो कारागर बनाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद आना नहीं पड़ेगा, उनको वो नियुक्त कर देंगे कुछ लोगों को, वो लोग कारागर की सृष्टि करेंगे और जिनको कैदियों को डालना अंदर डालेंगे वो, है ना। तो इस तरह भगवान को भी भौतिक दुनिया सृष्टि करने के लिए खुद नहीं करना पड़ता, कहा ले अपने आप को विस्तृत करते हैं महाविष्णु के रूप में। इसका एक श्लोक है वेदों में, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः एकस्तम महतः सृष्टिर् द्वितीयम अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। बोलते हैं एकस्तम महतः सृष्टिर्, एक महाविष्णु अनेक ब्रह्मांडों को अपने शरीर से विस्तृत करते हैं, आप देखते हैं ना पहले पिक्चर में अनेक ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा विष्णु है, वो ही महाविष्णु से विस्तरित होकर हरेक ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं, वो प्रवेश करते हैं अंदर, उनका नाम क्या है? गर्भोदाकशाय विष्णु, क्योंकि ब्रह्मांड को गर्भ बोलते हैं, गर्भ के अंदर प्रवेश करके वो नीचे लेटते हैं, वो उनके शरीर से पानी निकलते हैं और आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं और उधर अनंत शेष में लेट जाते हैं, लक्ष्मी पावन दबा रही है और उनके नाभि से एक कमल उगता है जिसमें ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है पहला। जब वो कमल खुलता है, कमल के अंदर कोटि कोटि जैसे जुगनू जैसे जीव चमक रहे हैं, उन जीवों में से एक को चुना उन्होंने, उनका नाम है ब्रह्मा, उनको पहला पुत्र बना लिया भगवान ने, बोला हे पुत्र ब्रह्मा तुम मुझे मदद करो, इन सब जीवों को शरीर दो, इनके लिए 14 भुवन बनाकर दूंगा, उनमें इनको बिठा दो, ऊर्ध्व लोकों में सत्वगुणी प्रदान जीवों को, अधर लोकों में तमोगुणी प्रदान जीवों को और बीच वाले लोक में रजोगुणी जीवों को स्थित करो उसमें, और मैं तुमको वेद सिखा दूंगा और तुम परंपरा में वेदों को भी दे दो सब जीवों को। तो भगवान ऐसे लेट कर अनंत शेष में ब्रह्मा के द्वारा सब काम करवा लेते हैं ब्रह्मांड के अंदर, इस तरह। तो उनका नाम है गर्भोदाक्षाय विष्णु। अब तीसरा विष्णु देख रहे हैं, वो कौन है? उनका नाम है क्षीरोदाक्षाय विष्णु। तो 14 भुवन है अभी दिखाएंगे आपको, उससे भी बढ़कर एक श्वेत द्वीप नाम का एक ग्रह है, उधर एक दुग्ध सागर है, दूध का सागर है, जिधर लेटे हैं एक विष्णु, उनका नाम है क्षीर उदकशाय विष्णु। क्षीर का मतलब है दूध, दूध के सागर में लेटे हुए विष्णु का नाम है क्षीरोदाक्षाय विष्णु। और वो विष्णु उधर लेटे हैं, लेकिन हरेक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बस जाते हैं, इसे हम सबके हृदय में, जैसे सूर्य एक आसमान में, अगर आपके पास 1000 गड़ा हो, 1000 गड़ा में आपने तेल भर दिया उसमें, तो सूर्य जो है हर एक गड़े में दिखाई देगा ना, ऐसे इस तरह भगवान ये जो क्षीरोदाक्षाय विष्णु है हर एक जीव के हृदय में विराजमान है क्षीरोदाक्षाय विष्णु। अब ये तीन विष्णु का नाम आप याद रखिए, पहला है महाविष्णु जो एक स्तम महतः सृष्टिर ब्रह्मांड को तैयार करते हैं, उसके बाद द्वितीयम अंड संस्थितम वो दूसरा गर्भोदाक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं, तृतीयम सर्वभूतस्तम तीसरा विष्णु दुग्ध सागर में लेटे हैं ऊपर। तो एक ब्रह्मांड को आप लेंगे, एक विष्णु है नीचे दूसरे विष्णु ऊपर, तो नीचे वाले विष्णु गर्भोदाक्षाय विष्णु है जिनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ऊपर वाले विष्णु कौन है? क्षीरोदाक्षाय विष्णु दुग्ध सागर में। अगर ब्रह्मांड में कुछ हलचल मचाता है कंस हिरण्यकश्यप से लोग, सब देवता लोग इकट्ठित होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा सत्यलोक से भी ऊपर जाकर वो क्या करते हैं, इनको मिलते हैं क्षीरोदाक्षाय विष्णु को मिलते हैं दुग्ध सागर में। अभी आप लोग समझ गए, क्योंकि वो ही विष्णु को मिलने के लिए सब देवता जाते हैं क्षीरोदाक्षाय विष्णु, और वो ही उनके पास सब अवतारों का जैसे टूल बॉक्स होता है, एक एक करके अवतार को रिलीज करते हैं, वो ऑर्डर में उसी ऑर्डर में रिलीज करते हैं। अभी पढ़ने वाले हैं हम 24 अवतारों के बारे में, हा? वो सबको रिलीज करने का काम किसका है, वो जो ऊपर लेते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनका काम। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु दो चीज करते हैं, एक अवतारों को रिलीज करते हैं टाइम टू टाइम जब अवतार आना है, दूसरा है हरेक जीव के हृदय में और अणु अणु में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। गरुदक्षाय विष्णु का काम क्या है, वो ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं कमल में, सब जीवों को आकर देने के लिए ब्रह्मा को सिखाते हैं और वेदों को देते हैं ब्रह्मा को, और वो 14 भुवन ये कमल के दंड के बाहर बनता है 14 भुवन, वो अभी दिखाएंगे आपको। ये गरुदक्षाय विष्णु, महाविष्णु का काम ब्रह्मांड को निर्माण करना, ये कस्तम महत सृष्टि। इस तरह तीन विष्णुओं के द्वारा भगवान कृष्ण इस दुनिया में भौतिक दुनिया की सृष्टि, भौतिक दुनिया की पोषण, भौतिक दुनिया की संहार और सब जीवों को मार्गदर्शन देना इत्यादि सब कुछ भगवान कृष्ण देख लेते हैं इन तीनों के द्वारा। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, जैसे हम मिट्टी से एक गड़ा बनाते हैं, उसको सुखा कर धरती के ऊपर ही रखते हैं, जिस धरती से हमने मिट्टी लिया गड़ा बनाने के लिए उसी धरती के ऊपर ही गड़ा रखते हैं। इसी तरह तीन विष्णु कृष्ण से ही विस्तरित होते हैं और कृष्ण में ही आश्रित हैं, हा? ये तीनों विष्णु कृष्ण में ही आश्रित हैं, ऐसे बताते हैं वो। अभी ये अभी तक मैंने चौथा प्रश्न का उत्तर दिया, अभी तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर अभी देने वाले हैं। अवतार की भूमिकाओं को मानते हुए शुद्ध सत्वगुण में स्थित भक्तों को वापस भगवत धाम लाने के लिए भगवान लीला करते हैं। अभी शौनकादि ऋषियों ने पूछा था कि लीला क्यों करते हैं, भगवान क्यों आते हैं दुनिया में, भगवान आते हैं दुनिया में लीला करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो या जो लोग भगवान की इस दुनिया में आकर लीलाएं करते हैं, भगवान उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, प्रेम जगा लेते हैं, वो लोग इस लीलाओं को सुनकर भगवत धाम लौट जाते हैं। तो सब जीवों को अपने भगवत धाम लौटाने के लिए भगवान इस तरह के लीला अवतारों में आते हैं। इधर पिक्चर में दिखाया है भगवान कृष्ण बैठे हैं बीच में और दशावतार हैं, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। लेकिन ये 24 अवतारों में लोग ज्यादातर दशावतार के बारे में बोलते हैं क्योंकि एकदम प्रोमिनेंट खास अवतार है। तो एक स्तोत्र है दशावतार स्तोत्रम करके, उधर आप सुनेंगे, जैसे तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा, ऐसे बोलते हैं, जैसे केशव धृता नरहरि रूपा, इसी तरह केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता मीन शरीरा, मतलब है मीन का मतलब है मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, सब केशव से ही आते हैं। केशव कौन है, केशव वो भगवान है जिनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, जो मुरली बजाते हैं, नील रंग के हैं, मोर पंख पहनाते हैं, वही भगवान है कृष्ण, उनको ही केशव बोलते हैं। तो इसलिए दर्द कहा गया है कृष्ण को बीच में, कृष्ण से ही ये सब अवतार हैं, अवतारों की अवतार आते हैं, सब अवतारों के उद्गम स्थान है कृष्ण, इसलिए कृष्ण का दूसरा नाम अवतारी बोलते हैं उनको। अवतारी का मतलब है जिनसे सब अवतार निकलते हैं। तो दूसरी और भी अवतार दिखाए हमने, तो हम आगे बढ़ाकर आपको दिखाएंगे अलग अलग अवतार के बारे में। ये दूसरे अध्याय का जो रिवीजन के लिए डाल है, तो आप बाद में आप देख सकते हैं उसको, अभी हम तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो इधर हम पुरुषावतारों के बारे में बोला और भाई इस अवतारों का विवरण है, और कृष्ण कैसे असंख्य अवतारों के स्रोत हैं, कृष्ण ही है। और भौतिक भगवान के भौतिक रूप और जीव का रूप इस दुनिया में काल्पनिक है, जैसे हमारे शरीर जो है जो पंचमहाभूतों से बनाकर, इसका भी एक आकार है लेकिन इस आकार का मतलब नहीं है। अभी देखिए मेरे कुर्ता पहना हो, मैं ऐसे हाथ रखूंगा तो कुर्ता भी ऐसे चलता है, तो मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो कुर्ता भी हिलता है, लेकिन कुर्ता का कुछ जान ही नहीं है, ये मृत कुर्ता है, लेकिन जब मेरे ऊपर मैं पाना हूं तभी लगता है कि ये भी इसका भी आकार है। ऐसे इसी तरह जीव का आकार इस दुनिया में काल्पनिक है, उसका असली आकार आत्मा का स्वरूप है। इसी तरह भगवान के एक भौतिक रूप है, उसका नाम बोलते हैं विराट पुरुष। तो इसके बारे में आपको जानना होगा इस अध्याय में, विराट पुरुष कौन है। जो 14 भुवन है, हम अभी भूमि में है, हम लोग भूमि के ऊपर, भूलोक भूलोक स्वलोक महालोक जनलोक महालोक तपलोक सत्यलोक, ये 7 लोग हैं। नीचे आतल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, हम बीच में है। ये 14 भुवन जो है इसमें हरेक प्लेन में अनेक ग्रह हैं, उसमें अनेक ग्रह होते हैं ऐसे। तो ये 14 भुवन अगर आप दूर से देखेंगे एक विराट पुरुष के रूप में दिखाई देगा आपको। एक श्लोक है विष्णु सहस्र नाम में, भूपाद चंद्र सूर्य नेत्रे कर्णा भाषा शिरोध्यमुखम दघनो यस्त्रेय अंतस्तम विश्वम स्वर्ण रक गो भोगी गंधर्व दैत्य चित्रम रम रम यते तम त्रिपुनमुषम विष्णुमीशम नमामि शांताकार जाता है। तो इधर बताया गया कि चंद्र सूर्य उच्च नेत्रे, विराट पुरुष का आंखें हैं चंद्र और सूर्य, और उनके हड्डियां हैं पहाड़े, उनके बाल हैं जो घास फूस इस दुनिया में देखते हैं, उनके आंखें पलक झपकता है जब रात होता है, इधर उनके आंख बंद है, जब सूर्य उदय होता है उनके आंख खुलता है। इस तरह पंछियों का कलरव होता है दुनिया में, वो उनकी आवाज है। और माया देवी सबको नचा रही है, मोहित कर रही है, मोहिनी होकर, वो उनकी मुस्कान है। और उनके वक्षस्थल धर्म है, उनके पीछे का पीठ जो है अधर्म है। इस तरह विराट पुरुष का वर्णन है भागवत में। तो वो विराट पुरुष का रूप भी पंचमहाभूतों से ही बनाया गया है, लेकिन विराट पुरुष के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे हमारा आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम आत्मा है बैठे हैं शरीर में, इसी तरह भगवान भी परमात्मा है लेकिन वो विराट पुरुष के शरीर में सब चीजें चला रहे हैं वो। और विराट पुरुष का रूप टेम्पररी है, ये क्षणभंगुर है वो भी, यही बता रहे हैं वो काल्पनिक है इसे। और श्रीमद भागवतम की महिमा लास्ट में बताया गया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया, ये विष्णुओं का महाविष्णु गर्भदक्ष शिरोदक्ष विष्णु। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते है। इस तरह भगवान सृष्टि करते हैं संहार करते हैं, सृष्टि करते हैं संहार करते हैं, दुनिया में जीवों को शरीर देते हैं। हमारे शरीर का भी प्रलय होता है, उसके बाद दुनिया का प्रलय होता है। तो ब्रह्मांड जब निकलता है सृष्टि होता है, जब उनके अंदर चला जाता है प्रलय होता है। तो एक श्वास में अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं, ब्रह्माओं को सृष्टि करते हैं, ये महाविष्णु है। तो गीता में भी भगवान बताते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में अनेक ग्रह तुम देखते हो, लेकिन इन सब ग्रहों के अंदर मैं मेरे शक्ति के द्वारा प्रवेश करता हूँ, उस ग्रहों को तैराता हूँ, उनके उनके स्थान में रखता हूँ। हमारे वैज्ञानिक लोग एक स्पुटनिक डालते हैं सैटेलाइट चलाने के लिए, कभी कभी स्पुटनिक भेजते हैं वो वापस लौट आता भी नहीं, वो उनके नियंत्रण में भी नहीं। जैसे चंद्रमा के लिए कुछ ग्रह कुछ स्पुटनिक भेजने के लिए प्रयत्न किए अभी कुछ ही महीनों के पहले, तो वो गया उनके हाथ से, पता नहीं कंट्रोल से निकल गया वो है? वो का बहुत पैसा खर्चा करके भेजा। ऐसे मार्स प्रोब है, चंद्रमा के लिए प्रोब भेजा है विदाउट एनी मैन अनमैन्ड प्रोब, लेकिन वो सब इनके कंट्रोल से निकल गया, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता अनेक बार है। लेकिन भगवान कोटि कोटि ग्रहों को तैराते हैं, सब उनके नियंत्रण में है। जैसे एक साइंटिस्ट ग्रहों को तैराता है अपने, ये स्पुटनिक को तैराता है सैटेलाइट को अपने कमरे में बैठकर, इस तरह भगवान अपने गोलक में बैठकर अपने विष्णुओं के द्वारा सब काम करवा लेते हैं इसे। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो इस दुनिया में तुम ये जान लो कि जो भी ऐश्वर्य है, किसी में सुंदरता है, किसी में बल है, किसी में शक्ति है, सब कुछ मेरे ही मेरे शक्ति का ही एक अंश मात्र है, ऐसे बताते हैं। सब विष्णु के कृष्ण ही स्तोत्र हैं, जैसे आप देख रहे हैं इधर, या ये ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान दिखाते हैं अनेक विष्णु उनसे निकलते हैं। एक शिरोधक्ष है विष्णु के बारे में बोला मैंने, जो दुग्ध सागर में लेटे हुए भगवान है और वही परमात्मा भी बनते हैं। हाँ, तो ये तीन विष्णुओं का मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन फिर क्यों वापस मैंने दिखाया है आपको, क्योंकि इसको रिवाइज करना चाहिए। खास विषय है, हमें बोलना नहीं चाहिए कि कैसे भगवान भौतिक सृष्टि को चला रहे हैं। महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, हाँ ठीक है। अभी एक एक ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं कि ये विराट रूप में भगवान प्रवेश करते हैं एक ब्रह्मांड में। वहां संपूर्ण भौतिक शक्ति अथवा अर्थात महत्त्व की सृष्टि कर लेने के बाद, तो इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बताया नहीं, प्रधान महत्त्व और अहंकार से मिश्रित होकर सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार निकलता है। उसके बाद सात्विक अहंकार से मन और इंद्रिया निकलते हैं, राजसिक अहंकार से बुद्धि निकलता है, इस तरह तामसिक अहंकार से पंच महाभूत निकलते हैं, तो इत्यादि मैंने आपको बोला नहीं। वो बहुत बड़ा विषय है, इस क्लास में बोल नहीं पाएंगे हम, लेकिन इतना आप जान सकते हैं कि ये सृष्टि की शुरुआत में जब इस तरह ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, भगवान प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर। प्रत्येक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए एक ब्रह्मांड के अंदर देखिए, वो नीचे लेटे हैं, उनका नाम क्या है, गर्भदक्ष विष्णु, उनके नाभि से कमल जो निकलता है वो ब्रह्मा ऊपर बैठे हैं और 14 भुवन है। यही गर्भदक्ष विष्णु है, हाँ ये 14 भुवन है जो मैंने बताया आपको। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति महाविष्णु से होती है, जो भगवान श्री कृष्ण के अंशों के अंश मात्र है, ऐसे बताया गया है एक श्लोक में। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सैक यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। विष्णु को, महाविष्णु को कला बोला गया, कला का मतलब अंश अंश है, अंश के अंश है, ऐसे बताया गया विष्णु को महाविष्णु। ऐसे महाविष्णु इतने बड़े काम कर रहे हैं ब्रह्मांड को सृष्टि करके, वो भी कृष्ण के अंश के अंश हैं। यहाँ के लोगों को ये बात मालूम नहीं है, वो कृष्ण को एक साधारण पुरुष समझते हैं मूर्खता के कारण। इधर ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण से अनेक विस्तृत रूप आते हैं, एक अंश के अंश है महाविष्णु। हाँ ये तो मैंने आपको बताया कि कृष्ण जो है सब देवताओं के स्रोत्र हैं, सब देवताओं के स्वामी हैं। तो ब्रह्मा ध्यान करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा को वही सिखाते हैं भगवान ही, ये ब्रह्म संहिता में भगवान की गुणगान करते हैं ब्रह्मा जी। मैं वो आदि पुरुष भगवान का भजन करता हूं जो अपने नित्य वृंदावन में वेणु बजाते रहते हैं, जिनके नेत्र कमलादल के समान है, इस तरह उनकी सुंदर स्वरूप का गुणगान ब्रह्मा जी करते हैं। तो अभी 22 अवतारों का वर्णन चालू हो रहा है इधर, कुमार और वराह, नारद, नर नारायण इत्यादि लोगों का भी इधर से। तो ये अवतारों का उद्देश्य क्या है ये बताया है कि इस दुनिया में खास किस विषय के लिए आते हैं। तीन चीज आप लोग जानते हैं, परित्राणाय, साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापन करने के लिए और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और असुरों को वध करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे असुरों को वध करना भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है, बड़ी बात नहीं है। और उनके पास इतने शक्तियां हैं, शक्ति को भेजकर एक तूफान आ गया, एक करोना आ गया है, तो सारे दुनिया में हलचल मच जाता है, कितने कोटि कोटि लोग मर सकते हैं। तो अगर हिरण्यकश्यपु रावण के हृदय में एक हार्ट अटैक बना कर दिया भगवान ने, तो तत्क्षण मर जाएंगे वो लोग, हैं क्या उनको खुद आने की जरूरत नहीं। इसी तरह भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है, क्यों? भक्त लोग जो है भक्ति में इतने डूबे रहते हैं, भगवान की भक्ति में, तो बाल न बांका कर सकाई, ऐसे बोला गया ना, जाको राके साई या मार न सकाई कोई, कोई उनको छू नहीं सकता भक्तों को। जैसे प्रहलाद को मार नहीं पाया उनके पिताजी, अम्बरीश को मार नहीं पाया दुर्वासा मुनि, तो भक्त तो अपने आप में सक्षम है, भगवान की भक्ति करके उनको सुरक्षा प्रदान हो जाता है। तो अगर भक्तों की सुरक्षा की भी चिंता नहीं, असुरों को भी वध करने के लिए चिंता नहीं, तो भगवान क्यों आते हैं? एक ही कारण के लिए आते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेमा प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं भगवान, ऐसे बताया है। और धर्म की संस्थापन के लिए, ताकि सब जीव भगवान की लीलाओं को देखकर और पढ़कर भगवान की ओर उनको प्रीति बढ़े, इसके लिए मौका देते हैं भगवान। अब इधर कृष्ण के विस्तृत रूपों को दिखाया गया है, आप डर मत जाना, अनेक इसमें विस्तृत रूप दिखाए गए हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है, तो आप आगे अभी धीरे धीरे देखते जाएंगे, आपको आसान हो जाएगा। मैंने पूरा दिखाया है एक स्लाइड में, लेकिन आगे थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा इसको, आप आपको समझ आएगा। अभी पहले देखेंगे, देखिए कृष्ण से एक स्वयं रूप आता है, स्वयं प्रकाश करके आता है। अभी स्वयं रूप क्या है अभी एक एक करके हम देखेंगे, पहले हम स्वयं प्रकाश देखेंगे। कृष्ण के रूप को ही बोलते हैं स्वयं रूपम, उनका नाम है स्वयं रूप। अभी स्वयं प्रकाश जो है उसमें आप देखते हैं प्रभव प्रकाश लिखा गया उधर, और प्रभव प्रकाश का मतलब क्या है, कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं कृष्ण के ही रूप में, उसको प्रभव प्रकाश बोलते हैं। गोपियों के साथ नाचने के लिए हर गोपी के बीच में एक कृष्ण थे, एक ही रूप के, ऐसे उसको प्रभव प्रकाश बोलते हैं। वैभव प्रकाश मतलब है विस्तारित करते हैं लेकिन अलग रूप में, जैसे बलराम, उसको वैभव प्रकाश बोलते हैं उसको। और उससे निकलता है तदेकात्म रूप, उसमें दो है, स्वांश है विलास रूप है। तो स्वांश जो है आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, अच्छा बताया है, तो इसका मतलब है जैसे कृष्ण बलराम विष्णु और वंशकुर वराह नरसिंह, उन सबको स्वांश बोलते हैं। विभिन्न अंश का मतलब हम लोग विभिन्न अंश हैं, हम छोटे हैं, विभिन्न अंश जो है छोटा है, स्वांश जो है वो भगवान के ही डायरेक्ट विस्तार है ऐसे। और विलास रूप का मतलब है तद्वेदकात्म रूप से, जैसे वैकुंठ में जो चतुर्भुज रूप नारायण होते हैं उनको विलास रूप बोलते हैं। अभी इधर स्वयं रूप के बारे में वर्णन है इधर। कृष्ण यह तो माइक दियो, हाँ बढ़िया।
कृष्ण वृंदावन में एक ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। रूप गोस्वामी, भगवान का वह रूप जो अन्य रूपों पर निर्भर नहीं करता, स्वयं रूप कहलाता है।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्वयं रूप क्यों बोलते हैं? किसी भी दूसरे रूप से कृष्ण का रूप निकला नहीं है। अगर आपको कोई पूछते हैं, अरे कृष्ण आप बोलते हो कि वो ही भगवान है, उनको किसने निर्माण किया बताओ? अरे कोई निर्माण नहीं किया उनको। जैसे ट्रेन में एक बोगी है, वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उसके आगे का बोगी खींच रहा है उसको, ठीक है, उस बोगी को देखो वो कैसे जा रहा है, उसके आगे खींच रहा है। इस तरह आप जाते जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंजन सब बोगियों को खींच रहा है, और इंजन को कौन खींच रहा है? कोई नहीं, इंजन के आगे, इंजन ही लास्ट है। इसी तरह इस दुनिया में एक कारण है, उसके और एक कारण है। कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम, ऐसे बताया है, एक श्लोक बोलेंगे। आई स्टार्टेड थ्री नो सॉरी
आई कितना टाइम हो गया? 15 मिनट है।
ओके हरे कृष्णा। अभी एक श्लोक बोलेंगे हम। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। देखिये जो बताया गया है कि ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादिर उनका कोई सृष्टिकर्ता कोई नहीं है, आदिर सब सृष्टियां उनसे ही निकलते हैं, सर्व कारण कारणम सब कारणों के कारण है, ऐसे बताया है। तो इस तरह इसलिए उनका नाम है स्वयं रूप, ओरिजिनल रूप है, इस तरह बोलते हैं कृष्ण को। अभी समझ गए हैं, अभी वैभव प्रकाश का वर्णन है, देखे ये प्राव प्रकाश है। प्राव प्रकाश इधर है, समान गुणों वाले बहुत सारे रूप, उदाहरण रासलीला में कृष्ण का विस्तार, वो प्राव प्रकाश। वैभव प्रकाश देखिए बलराम उदाहरण दिया मैंने, अभी तदेकात्म रूप पढ़िए, तदेकात्म रूप।
जब वे भिन्न रूप में प्रकट होते हैं और उनकी दिव्य भावना और गुणों में थोड़ी भिन्नता होती है तो इसे तदेकात्म रूप कहा जाता है। तदेकात्म रूप के दो प्रकार है, विलास और स्वांश।
करेक्ट, अभी देखिए ये जो बलराम जी हैं, इसको बोलते हैं विलास, विलास का उदाहरण है ना? बलराम जी उनका उदाहरण, बलराम से विस्तारित वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज रूप, इनको बोलते हैं विलास रूप। और इधर देख रहे हैं प्रभव विलास, देखिए प्रथम चतुर्व्यूह से विस्तारित होते हैं, प्रथम उधर देखते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और ये किधर से आते हैं, देखिए चार भुजों वाले विष्णु रूप से आते हैं, जिनको बोलते हैं नारायण, उनसे आते हैं चार रूप इस तरह है। और ये इसको वैभव विलास बोलते हैं, जो ये नामों को याद रखना मुश्किल नहीं है, केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः, हम तिलक डालते हैं ना, केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवाय नमः वसुनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः। सो बारह विष्णु इधर बारह रूप है जो चतुर्युग से आते हैं। ऐसे तो इस तरह वैभव विलास पढ़िए, वैभव विलास के बारे में।
द्वितीय चतुर्भुज रूप वे चार दिशाओं में स्थित होते हैं। ये चतुर्भुज रूप केशव के प्रारंभ होकर तीन बार पुनः विस्तारित होते हैं। उनका नामकरण अस्त्रों की स्थिति के अनुसार होता है। ये बारह मासों
अस्त्रों की स्थिति का मतलब क्या है, आप पूछेंगे कि अनेक नारायण है, इनको कैसे हम पहचानेंगे, तो शंख चक्र गदा पद्म का ऑर्डर जो है वो बदलेगा, किसी के पास शंख इस हाथ में है, किसी के पास शंख इस हाथ में है, किसी के पास ये इस हाथ में है, किसी के पास ये हाथ ऊपर वाले हाथ में है, ऐसे दो हाथ ऐसे हैं, दो हाथ ऐसे हैं, तो आप देखेंगे आपको फर्क दिखाई देगा आपको, तो उनके हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म की पोजिशन देखकर आप समझ पाएंगे कौन व्यक्ति है। ऐसे आगे
ये बारह मासों के प्रधान विग्रह है।
ये बता रहे हैं कि इतर बारह नाम जो बताया गया ये सब वैभव विलास में आते हैं। अभी आपने पूरा पूरा देख लिया आपने, ये पूरा जो भी दर दिया है उसको एक्सप्लेन किया, आप धीरे से चैतन्य चरितामृत से पढ़ सकते हैं, और अच्छा समझ आएगा। पढ़िए।
भगवान की आंशिक अभिव्यक्तियां मूल रूप में अभिन्न लेकिन कम शक्ति प्रति प्रदर्शित करते हैं।
जैसे 10,000 वोल्ट होता है, 10,000 वाट जो बल्ब होता है, मान लीजिए आपके पास 10,000 वाट बल्ब, कृष्ण है इसे, और विष्णु 9,000 वाट, शिव जी 7,000 वाट, ब्रह्मा जी 5,000 वाट, इंद्र 1,000 वाट, और बाकी वर्ण वायु अग्नि 500 वाट बल्ब हैं, और उसके बाद बाकी सब देवताएं हैं वो 200 वाट 100 वाट ऐसे, और हमारे जीव हम 50 वाट। इस तरह हरेक का पोटेंसी शक्ति भगवान से लेकर जीव तक हम देखेंगे अलग अलग होता है, वही समझा रहे हैं उधर। हाँ पढ़िए, वो पुरुषावतार है, लीलावतार है और गुणावतार, तीन चीज। पुरुषावतार पढ़िए।
सृजन से संबंधित भगवान के अंश।
लीलावतार,
लीलावतार भगवान के असंख्य अंश जो विभिन्न लीला प्रदर्शित करते हैं, उदाहरणार्थ समुद्र की लहरें।
करेक्ट। अभी आप देखेंगे कल के अवतार आने वाला है कलयुग के अंत में, वो लीला अवतार है वो। लेकिन युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल के पहले, वो युगा अवतार है। इस तरह। और गुणावतार,
प्रकृति के गुणों के नियंत्रित करने वाले भगवान के अंश।
करेक्ट। गुणावतार का होना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गुणावतार है। और शक्ति आवेश अवतार,
विशेष रूप से सशक्त व्यक्ति जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, विभूति भगवान की शक्तियां जिनका भगवान गीता में 10वें अध्याय में वर्णन करते हैं।
जैसे नारद जी हैं, वो भक्ति के अवतार हैं, भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए शक्तिपात भगवान करते हैं उनको। अभी चतुष कुमार है, वो ज्ञान के मार्ग के लिए वो शक्ति आवेश अवतार है वो। इस तरह पृथु महाराज पालन शक्ति है, और परशुराम संहार शक्ति है वैसे। इस तरह हरेक शक्ति आवेश अवतार जो होता है वो जीव है, लेकिन भगवान शक्तिपात करते हैं उनको। लेकिन उसमें दो है, उसमें एक है आवेश, एक साक्षात है। आवेश का मतलब है जैसे एक जीव नारद मुनि के ऊपर भक्ति का आवेश आकर और भक्ति का प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति आवेश। दूसरा शक्ति आवेश, आवेश का मतलब जैसे अनंत शेष है, वो भगवान का ही विस्तारित रूप है, वो सेवा शक्ति है, सेवन शक्ति है, लेकिन वो भगवान का ही विस्तारित रूप है, ऐसा नहीं कि वो जीव है। इसमें दो वैरायटी है उसमें। मनवंतर अवतार,
प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अंश।
करेक्ट। तो ब्रह्मा के एक दिन में भगवान ब्रह्मा के एक दिन का मतलब चतुर्युग। जैसे ब्रह्मा का एक दिन हम बताएंगे पहले आपको, सत्य त्रेता द्वापर कली, इनमें देखेंगे कलयुग का कितना है, 4,32,000 ईयर्स। इस तरह आप द्वापर लेंगे दो गुना, त्रेता युग 3 गुना, और सत्ययुग 4 गुना आप लेंगे, सब मिलाकर 10 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 43,20,000। ये ब्रह्मा का, ये देखते हैं ब्रह्मा का ये एक दिन है, उनका रात्रि भी उतना ही है। ऐसे आप 365 डेज लेंगे आप, इस तरह आप वो एक साल है, इस तरह 1,000 साल है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा का आयु बताया मैंने, लेकिन ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनु आते हैं, स्वयं मनो, सरोचिष मनो, रायवत मनो, चक्षुष मनो, ऐसे अनेक मनो आते हैं। तो एक एक मनो 71 मिलेनियम के लिए वो नेतृत्व करते हैं दुनिया को, मनु संहिता इत्यादि देते हैं वो। इसलिए 14 मनु × 71 आप डालेंगे 1,000 आएगा आपको। इसका मतलब एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु आकर जाते हैं, उनको बोलते हैं मनमंत्र अवतार। युगावतार,
युग धर्म की स्थापना करने वाले भगवान के अंश।
हाँ, हर एक युग में एक योग अवतार आकर युग धर्म को सिखाते हैं। बढ़िया।
सभी यज्ञों के भोक्ता, लीलावतार अवतार वराह। सभी भक्तों के, सभी यज्ञों के भोक्ता, उद्देश्य गर्भोदक महासागर के पृथ्वी को उठाकर उसे वापस मूल स्थिति में लाना।
हाँ, इस तरह अभी मैं दिखाऊंगा आपको अलग अलग लीला है। मत्स्यावतार
भक्तों के प्रति कृपालु, उद्देश्य भगवान के भक्त सत्यव्रत पर विशेष कृपा करके करने के लिए बाद में सत्यव्रत मनु बन गए।
हाँ करेक्ट। देखिए जब पहले मछली अवतार आए, इतने ही छोटे मछली थे, तो राजा ने देखा कुछ मछली है, लेकिन बोलने वाला मछली था वो बोला कि हे राजन, हम जलचर पानी में रहते हैं, बड़ा मछली आकर हमको खा लेता है, इसलिए हमको बहुत डर है। आप तो राजा हो, सबको सुरक्षा प्रदान करते हो, क्या हमको भी सुरक्षा प्रदान करोगे क्या? राजा के हृदय में अनुकंपा जग उठा, बोला क्यों नहीं मछली, बोलो मैं कैसे तुमको सुरक्षा प्रदान करूं, बताओ। वो बोला कि मुझे एक दूसरे तालाब में डाल दीजिए, सुरक्षित रहूंगा। तो उन्होंने एक छोटे तालाब में डाला, तो मछली बड़ा हो गया। तो उन्होंने बुलाया राजा को वापस, बोला कि ये तालाब भी छोटा पड़ रहा है राजन, ये एक झील में डाल दीजिए हमको। ठीक है, एक झील में डाला उन्होंने, तो इतना बड़ा हो गया झील के बराबर। बोला कि राजन झील भी छोटा पड़ रहा है, हो सकता है तो और कुछ बड़े जिधर ज्यादा पानी होगा उधर हमको डालो। इस तरह ले लेकर डाला उसने समुद्र में, समुद्र के जमान बराबर एकदम लंबे हो गए ये मीन, ये मछली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हमने जीवन गाय नहीं है, सुनहरा रंग का है, इतना लंबा है, बोलने वाला मछली है, ये क्या चमत्कार है, ये कौन है? विस्मित हो गया राजा। तब भगवान को पूछा उन्होंने, ये मछली बताओ तुम तो साधारण मछली नहीं दिख रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि कुछ विस्मित बात है, आप तो आपकी आइडेंटिटी बताओ, आप कौन हो बताओ, आपके व्यक्ति मत बताओ। तब जो मीन मत्स्य अवतार थे वो मुस्कुराने लगे, बोले राजन मैं बता देता हूँ सत्य बात, मैं परम भगवान हूँ, परम सत्य हूँ, इस तरह मैं अवतरित हुआ हूँ, केशव धृता मीन शरीरा, इस तरह आप सब ऋषि मुनियों को धर्मात्माओं को बचाने के लिए मैं आया हूँ, इस तरह बताते हैं, इस तरह लीला करते हैं भगवान।
कुर्म अवतार, समुद्र मंथन लीला के मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए वे अपनी पीठ पर पर्वत के घर्षण से प्रसन्न थे।
देखिए ये बहुत बड़ी लीला है, समुद्र मंथन की लीला, जब मंदार पर्वत को लेकर उसमें वासुकी को बांध कर असुर लोग एक ओर, देवता लोग दूसरी ओर, ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे मंथन कर रहे थे। लेकिन पहले मंदार पर्वत ऐसे हिलता था नीचे गिर रहा था, वो उसको बैलेंस नहीं मिला, तो उसको बैलेंस देने के लिए भगवान ने अपने आप को कुर्म के रूप में विस्तारित किया उसके नीचे, तो उनके पीठ के ऊपर ऐसे पर्वत घसीट रहा था, ये कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं, घसीट नहीं रहा था उसको, उसके ऊपर हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं मालूम नहीं, मालूम है आपको, ये कटकटकटकटकटा ऐसे जैसे हम खुजली करते हैं ना, ऐसे किया, तो ये कुर्म को बहुत अच्छा लगा, ये ऐसे उन्होंने श्वास लिया, उससे समुद्र में लहरें उठने लगे, जिस दिन से लहरें उठना चालू हुआ अभी तक लहरें बंद नहीं हुई, सब समुद्र में लहरें उठ रहे हैं, क्योंकि कुर्म अवतार ने लहरें पैदा किया इसे। तो ये कुर्म अवतार देखिए उनके पीठ के ऊपर रगड़ रहे हैं, रगड़ पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ डालकर रगड़ रहे हैं, उनको कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा मैं भगवान हूँ, उनको नीचे डालकर एक पहाड़ डाला ऊपर ऐसे रगड़ो, देखेंगे वो जिंदा रहेगा कि नहीं, जिंदा रहेगा तो मान सकते हैं भगवान है। देखिये भगवान किस तरह की लीलाएं करते हैं, देखिए भगवान मुस्कुरा रहे थे कुर्म के रूप में, उनका अच्छा लगा उनको कि ये लोग रगड़ रहे हैं, बहुत अच्छा खुजली हो रहा है हमारा, हम पीठ तक पहुंच नहीं पा रहे, हमारे हाथ नहीं पहुंचता है, लेकिन ये लोग खुजली कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे सोचा उन्होंने। इस तरह भगवान की लीला में बहुत मधुरिमा है, इस तरह देवता असुरों की समुद्र की लीला में भगवान ने मदद की। पढ़िए
नरसिंह अवतार, क्रोध के सर्वोच्च रूप उद्देश्य अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए।
हाँ भगवान नहीं प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, ये क्या बड़ी बात है, किसी के द्वारा मार सकते थे, लेकिन भगवान प्रकट हुए प्रहलाद को ये दिखाने के लिए, प्रहलाद तुमने इतना भक्ति की है मेरे लिए, देखो जो मेरे भक्तों को सताता है उसको कितना मैं क्रोध से मारूंगा, ये प्रहलाद को दिखाने के लिए और भगवान को, ये प्रहलाद को प्रोत्साहन देने के लिए भगवान नरसिंहदेव अवतरित हुए, इस तरह से।
वामन अवतार, दंड के सर्वोच्च रूप उद्देश्य देवताओं के राज्य को बलि महाराज से प्राप्त करके उन्हें लौटाने के लिए प्रकट हुए थे।
एक बार बलि महाराज ने देवताओं के राज्य को छीन लिया था अपने पास, देवता लोग राज्य कुछ नहीं कर पाए, इधर उधर उड़ रहे थे, तो उनकी माँ आदित्य ने प्रार्थना की भगवान को, विष्णु को एक आराधना की, तो करके विष्णु के दर्शन पाया उन्होंने, तो उन्होंने विनती किया कि मेरे पुत्र जो होते हैं इंद्र इत्यादि, उनको उनके राज्य प्राप्त हो, हम नहीं चाहते कि दूसरे के राज्य वो हड़प ले, लेकिन उनके राज्य को चलाने के लिए आप कुछ मार्ग उपाय कीजिए। तो भगवान ऐसे वामन देव के रूप में आए और जाकर इनको मिला, बलि महाराज को मिला, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कौन ये तेजस्वी छोटा ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन तीन पग मांगा, लेकिन तीन पांव में उन्होंने पूरे, दो पांव में ही माप लिया दुनिया को ऐसे, लेकिन तीसरे पांव रखने के लिए स्थान नहीं था। तो तब वामदेव ने बोला बलि को, है बलि तुमने बोला तीन पांव दोगे, अभी दो ही दिया तुमने, तीसरा नहीं दिया है, इसलिए तुमको अभी कैदी बनाया जाएगा। तो वर्ण पाश से उनको बांधा। अभी देखिए परिस्थिति, देखिए बलि महाराज की, उनके राज्य भी छीन लिया गया और उनके गुरु भी उनसे नाखुश हैं और सब मिनिस्टर लोग कुपित हो गए हैं कि छोटा बालक आकर सब ले लिया करके और प्रजा रो रहे हैं और इस तरह वर्ण पाश से बांधा गया है बलि। इस परिस्थिति में भगवान ने बोला तीसरा पांव मैं किधर रखूं बताओ। तब बलि बोला है भगवान आप तो परम सत्य हो, सब कुछ आपके ही हो, तो मैं अपने आप को न्यौछावर कर देता हूँ। आत्मनिवेदन किया उन्होंने, भगवान एकदम प्रसन्न होकर बलि को बोला क्योंकि तुमने अपने आप का शरण दे दिया मेरे श्री चरणों में, तो मैं भी तुम्हारे द्वारपाल बनूंगा। तीन वरदान दिया भगवान ने, तुम अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे, यही संपत्ति जो मैं तुमसे ले रहा हूँ वो वापिस दे दूंगा तुमको, और दूसरा है तुम अभी बिल स्वर्ग के राजा बनोगे, और तीसरा है मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। ऐसे वामन देव द्वारपाल बने, इस तरह लीला किया उन्होंने बलि के साथ। हाँ पढ़िए लीला अवतार राम।
भगवान राम दंड के सर्वोच्च रूप, उद्देश्य देवताओं को प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु प्रकट हुए थे। शिक्षा, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य संभव में श्रद्धा मत रखो।
क्यों दंड के सर्वोच्च रूप बताया गया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ पनिशमेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि रावण जैसे कोई कामुख इस तरह भगवान के अर्धांगिनी सीता को लेकर भोगने के लिए प्रयत्न करेगा, तो भगवान दिखाना चाहते हैं इस दुनिया में कि उसका दंड कैसे मिलेगा, उसका सर्वनाश हुआ रावण का उसके सब राज्य के साथ। इस तरह सही ढंग से भगवान दंड देते हैं गलत काम करने वालों को, और देवताओं को भी उन्होंने प्रसन्न किया, और भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे विभीषण ने उनके ऊपर विश्वास रखा और सुग्रीव ने भगवान राम सिंह के ऊपर विश्वास रखा और सब यशस्वी बने, क्योंकि भगवान के बात मानकर चला वो लोग यशस्वी बने। तो ये तो हमने बोल दिया पुरुषावतार। गुणावतार पढ़िए।
ब्रह्मा जी रजस
सृजन करते हैं,
सुजन, विष्णु सत्व गुण पोषण करते हैं, शिव तमस गुण में संहार
करते हैं, ये गुणावतार बोलते हैं इनको।
शेष
ये ऊपर
शक्तिवेश अवतार, शेष स्वस्य सेवन शक्ति, भगवान की व्यक्तिगत सेवा के लिए अनंत भूधारण शक्ति, जगत के पोषण के लिए
ये अनंत शेष।
ब्रह्मा सृष्टि शक्ति सृजन, नारद भक्ति शक्ति भक्ति, चतुर कुमार ज्ञान शक्ति ज्ञान।
ऐसे मैंने बोला ये सब जीव हैं, लेकिन शक्तिपात किया है भगवान ने इनको, शक्तिपात के द्वारा वो बड़े शक्तिशाली बनते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने 12 साल में इतने निर्माण किया सारे दुनिया में केंद्रों को, ऐसे सिर्फ भगवान की शक्तिपात से ही होता है वो। प्रतु
पालन शक्ति, संसार पर शासन करते हेतु, ऋषियों द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने राजा का रूप स्वीकार किया। पृथु
करेक्ट।
परशुराम दुष्ट नाशक,
दुष्टा दुष्टनाशक वीर्य, दुष्टों का विनाश करने वाले संहार शक्ति है वो। ऐसे अभी मन मंत्र बता रहे, मैं इसके बारे में बोल दिया आपको, 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में और मार्गदर्शन देते हैं समाज को। हाँ,
युग अवतार प्रत्येक युग में युग धर्म स्थापित करने के लिए भगवान के अंश प्रकट होते हैं। चार रंगों में सत्व, सत्य, सफेद, शुल्क, श्वेता, लाल, रक्त, द्वापर, श्याम, कृष्ण, कली, गौर, सुवर्णवर।
इस तरह शुक्लोपीत तथा रक्त ऐसे बताया गया है। अलग अलग रंगों में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे अभी द्वापर युग में श्याम वर्ण में कृष्ण अवतरित हुई है, अभी कलयुग में गौर वर्ण में चैत्र महाप्रभु अवतरित हुए हैं। ऐसे ऐसे बताते हैं। ऐसे शुक्ल और रक्त के लिए भी भागवत में पढ़ेंगे, नाम दिया है उसका भी।
कृष्ण के अवतार के समय सभी अवतारों के गुण उनमें विद्यमान रहते हैं।
करेक्ट।
अन्य अवतार कृष्ण के आंशिक स्वरूप होते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार हैं। श्रीमद् भागवत।
तो इसलिए बताया मैंने, कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और बाकी सब अवतार हैं अंश उनके। पढ़िए।
यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुल्क रूप में प्रकट हो, चाहे रक्त या पीत रूप में हो, वे वही पुरुष रहते हैं। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंग धारण करते हैं, जिस तरह सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं। कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अथवा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसे दिखाई देता है।
हाँ, देखिए, 3 लोगों को पुरुषोत्तम नाम से हम संबोधित करते हैं, विष्णु, राम और कृष्ण। व्यक्ति तो कृष्ण एक ही है। जैसे एक मोमबत्ती को लेकर, नहीं तो एक दिया को लेकर, अगर आप 1000 दियाओं को जलाओगे आप, सब दिया एक समान दिखेगा, लेकिन मूल दिया जो है जिसको लेकर आपने सबको जलाया वो कृष्ण है, और बाकी सब विस्तार उनसे आते हैं, विष्णु, राम इत्यादि, वो उनके विस्तारित रूप है उनके, लेकिन उनको भी पुरुषोत्तम नाम से पुकारते हैं। प्रभु रामचंद्र हरे रंग के हैं, उनको बुलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श मनुष्य समान जीते हैं, और विष्णु को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। तो ये श्लोक सम्राट श्लोक बोलते हैं इसको भागवत में, क्योंकि ये श्लोक का प्रभाव सारे भागवत में है। अभी बोलेंगे, पीछे बोलिए सब लोग। एते चांस कला पुंसः,
एते चांस पुला
कला
कला पुंसः,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
इंद्रारि व्याकुलं लोकम,
इंद्रारि व्याकुलं लोकम,
मृडयन्ति युगे युगे,
मृडयन्ति युगे युगे।
पढ़िए पढ़िए।
यह क्यों सम्राट श्लोक है? कोई अपष्टता नहीं है,
अस्पष्टता
नहीं है, पूर्णता स्पष्ट है,
स्पष्ट है। देखिए, ये ते च अंश कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, का मतलब है ये सब जो है, ये 22 अवतार हैं, ये कृष्ण के या तो अंश हैं, कला का मतलब अंशांश है, लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं, वो खुद ही भगवान है, इस तरह बताया गया है। जो सब अवतार भगवान से ही निकलते हैं, ये बात है, कृष्ण से निकलते हैं, इसलिए कृष्ण को एक साधारण एक अवतार मानना नहीं चाहिए, कृष्ण अवतारी है। अवतारी का मतलब जिनसे अवतार निकलते हैं। हम इन भगवान को कैसे जान सकते हैं?
इधर
बताते हैं शब्द, में बताया गया है, ये भागवत में 38 श्लोक है। स्ववेद दातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः यो अमायया संततया अनुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। इधर बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए कृष्ण को समझने के लिए। बताते हैं भगवान धातु है, वो ही सृष्टि करता है, रथांगपाणि है जो रति के पैरों को लेकर भीष्म की ओर भागते हैं। अमायया, फॉर वन हु रेंडर्स अनरिजर्व्ड सर्विस, उसको क्या बोलते हैं, जो भगवान के लिए सेवा किया है संततया किसी भी रुकावट के बिना अनुवृत्तिया अनुकूल सेवा भगवान किसी चरण में किया है किसी ने, वो ही लोग उस भक्ति के द्वारा ही उनको समझ सकते हैं। ये बात सुनकर श्रवणकाल ऋषि ने सोचे, अरे हमने भक्ति नहीं किया है, सेवा नहीं किया है, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, ऐसे सोचा उन्होंने। तब अगले श्लोक में बोलते हैं, नहीं वो एक इधर नहीं दिया गया है, 39 नहीं दिया है, 39 में बोलते हैं कि ये सुत गोस्वामी बोलते हैं श्रवणकाल ऋषियों को, आप मत सोचो कि आपने भक्ति नहीं की है, आपके अंदर एक अच्छा गुण है। क्या है? आप लोग बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं। अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं जवाब दूंगा, उस जवाब को ले लो और इसको अपने जीवन में लागू करो, भक्ति लागू करो, अभी भगवान को आप तो प्राप्त करोगे, ऐसे बोलते हैं। तो 40वां श्लोक से लेकर भागवत की गुणगान हुआ है इधर, पढ़िए।
अवतार जिनका हम संग प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और भगवान कृष्ण के प्रस्थान के ठीक बाद प्रकट हुआ है, सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह पूरी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है।
ये श्लोक सुंदर श्लोक है 40वां। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। बताते हैं ये ब्रह्म सम्मितं, ये भगवान कृष्ण का ही अवतार है भागवत। अभी थोड़ा बताएंगे भागवत के संबंध में। देखिए, जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी मेरा काम हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों को स्थापित कर दिया मैंने, सारे दुनिया के राजा बन गए वो, अभी हमें भगवत धाम लौटना है, मेरे धाम में लौट जाऊंगा सब भक्तों को लेकर, ऐसे उन्होंने सोचा। लेकिन तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं लौट जाऊंगा तो कली का युग आ जाएगा, जमाना एकदम अंधकार छा जाएगा इस दुनिया में, सब कली के जीव तड़पेंगे कली के प्रभाव से, उनको कली के प्रभाव से ऊपर उठने के लिए मुझे कुछ तो करके जाना चाहिए, उनको सुविधा प्रदान करके जाना चाहिए। तब इस तरह सोचकर भगवान ने भागवत को छोड़कर गया। कैसे भागवत को छोड़ा? परीक्षित को निमित्त बनाया, तो भागवत उनको सिखाया गया। तो भागवत को एक सूर्य से तुलना किया है भागवत के अंदर ही। एक श्लोक बताऊंगा आपको, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। अर्क का मतलब है सूर्य। जो अंधकार तो है कलयुग की, लेकिन भागवत जो है वो अंधकार को मिटा देता है, रोशनी देता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, ये बात बताया गया है इधर। भागवत की गुणगान है इसे। उसमें भगवान के उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के चरित्र है। चकार भगवान ऋषि, वेद व्यास ने लिखा है, निःश्रेयसाय लोकस्य, सब लोगों के कल्याण के लिए है। धन्यम स्वस्त्ययनम महत, तो भागवत पढ़ने से शांति सुख परमानंद सब प्राप्त होगा आपको, वो परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, ऐसे बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भगवान का नाम, भगवान का दिव्य नाम महान आचार्यों की विधि के अनुसार निरंतर जप सभी के लिए सफलता का निसंदेह और भरहित मार्ग है। अनजाने में किया हुआ जप भी किसी को जन्म और मृत्यु के जटिल जाल से मुक्त कर सकता है।
देखिए, जो बताया गया है पहले क्या क्या भगवान के अवतार हैं जिससे हम संग कर सकते हैं। एक है भगवान के हरि नाम, बताया गया है। अगर हरि नाम को कोई रटता रहेगा नियमित रूप से रोज, वो जन्म मृत्यु बंधन से ऊपर उठ जाएगा, भगवान की प्रेम प्राप्त करेगा, भगवत धाम में सेवा आराधना प्राप्त करेगा। कैसे कृष्ण ही सब अवतारों के स्रोत है वो भी बताया गया है। अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधेर द्विजाहा, ऐसे बताया गया है। भगवान के अनेक असंख्य अवतार हैं इस दुनिया में निकलते हैं, लेकिन उसके आगे बताते हैं ये ते चांस कलापुम सह ऐसे, लेकिन सब अवतार अंततो गत्वा किससे आते हैं, कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को जो सुनता है सुनाता है वो भौतिक दुनिया के सब दुखों से ऊपर उठ जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है और भगवत धाम में जाकर सेवा देता है, भगवान की सानिध्यता में रहता है। भगवान विराट रूप,
भगवान विराट रूप और जीवों के भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर वास्तव में काल्पनिक हैं। विराट रूप भगवान के रूप का भौतिक धारणा है जो काल्पनिक है।
एतत् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैः विरचितं महत् आदि विरात्मनि। देखिए ये बताते हैं कि ये विराट रूप जो है, जैसे मैं आपको इसलिए शुरुआत में ही मैं बता दिया आपको इसके बारे में, वो भी पंचमाभूतों से बनाया गया है, ये 14 लोकों का विराट रूप है और हमारा शरीर भी उससे बनाया गया है, वही बताया गया है। पढ़े भगवान
भगवान विराट रूप
और वह टाइटल वही है नीचे,
केवल मूर्ख ही भगवान को दिव्य दिव्य लीलाओं को सामान्य मानते हैं। भगवान को समझने के लिए अहेतु की अप्रतिहता और अनुकूल सेवा की आवश्यकता होती है।
इसलिए अनेक लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं काल्पनिक कथा है, कुछ लोग विश्वास ना करने के कारण उनको इन लीलाओं से लाभ नहीं है, और उसको अंग्रेजी में मिथोलॉजी बोलते हैं इन लीलाओं को, इसलिए वो लोग कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन जो श्रद्धा के साथ सुनता है उसके चित्त शुद्ध होता है, भगवान को प्राप्त करता है वो।
श्रीमद् भगवत भागवतम की महिमा। भगवान का साहित्यिक अवतार, सभी शास्त्रों का सार, सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित को सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई। कृष्णा के जाने के पश्चात सूर्य की तरह उदित हुआ,
यही बताया मैंने। देखिए कृष्णा अपने स्वधाम लौट रहे हैं धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर, तब उन्होंने परीक्षित को निमित्त बनाकर, सुखदेव गोस्वामी को निमित्त बनाकर परीक्षित ने प्रश्न पूछा, उनको 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने की एक श्राप था, उन 7 दिन में उन्होंने बहुत बढ़िया भागवत कथा श्रवण की और प्रश्नोत्तर किया, आसमान से फूल की वर्षा हुई, 7वां दिन परीक्षित यह त्याग करके भगवत धाम लौट गया। तो परीक्षित तो पांडव के वंशज हैं, उस वंश में आकर बहुत महान सिद्ध भक्त है। सुखदेव गोस्वामी तो वेदव्यास के सुपुत्र हैं, तो इनकी संभाषण भागवत है, भगवान की लीलाओं को पढ़कर हम लोग, इसलिए मैं पहला स्कंद ले रहा हूँ, पहला स्कंद में 19 अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है पहले स्कंद में। तो ये श्लोक है, ये 30 अध्याय के पूरे सारांश है, यह भागवत के बारे में सुनकर शौनकाद ऋषि श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में प्रश्न करते हैं अभी। अध्याय 4 में प्रवेश, इसके बाद हम जाएंगे अगले, यह नारद मुनि का प्राकट्य, अभी नारद मुनि प्रकट होंगे वेदव्यास के आश्रम में, जो उनके शिष्य हैं, वेदव्यास उनके शिष्य हैं नारद के, तो अगले हफ्ते हम प्रवेश करेंगे इसमें। तो आज मेरे गुरु महाराज का एक कार्यक्रम है ऑनलाइन में, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, आज प्रश्नोत्तर करने के लिए बहुत कम समय है, आपके प्रश्न आप लिख सकते हैं, मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा, ठीक है।